ये हफ्तावार बाइबल कादर सीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानिब से है जो न्यू जर्जी अमरीका में वाक़िया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 12 जनवरी 2025 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून साक्रामेंट सुनहरी मतन अमाल। ऐ खुदावंद, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? जवाबी मतालिया इब्रानियों। बस ऐ भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो उस रसूल और सरदार काहन यसू पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था। चुनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीज़ें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादम की तरह दयानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, मगर मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं, बशर्ते के अपनी दिलेरी और उम्मीद का फ़ख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें। अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं बशर्ते के अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। दरसीवाज बाइबल में से जबूर। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाऊंगा। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं जब तक वो हम पर रहम ना करे। गिनती। तब बनी इसराइल दश्ते सेना से कूच करके निकले। गिनती। फिर लोग कुड़कुड़ाने और खुदा के सुनते बुरा कहने लगे, चुनाचे खुदावंद ने सुना और उसका गजब भड़का और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई, और जो मिली जुली भीड़ उन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी और बनी इसराइल फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग हैं मेरे हजूर जमा कर, और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा, और लोगों से कह कि कल के लिए अपने आप को पाक रखो तो तुम गोश्त खाओगे। फिर मूसा कहने लगा कि जिन लोगों में मैं हूं इनमें 600,000 तो प्यादे ही हैं, तूने कहा है कि मैं इनको इतना गोश्त दूंगा कि महीने भर इसे खाते रहेंगे, तो क्या ये भेड़ बकरियों के रेवड़ और गाय बैलों के झुंड इनकी खातिर ज़बह हों कि इनके लिए बस हो? खुदावंद ने मूसा से कहा, क्या खुदावंद का हाथ छोटा हो गया? अब तू देख लेगा कि जो कुछ मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावंद की बातें उन लोगों को जा सुनाई, और खुदावंद की तरफ से एक आंधी चली और समंदर की तरफ से बटेरें उड़ा लाई और उनको लश्करगाह के बराबर डाल दिया। यसाया। देखो, मेरा खादम इकबालमंद होगा, वो आला बरतर और नहायत बुलंद होगा। युहन्ना। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, ऐ रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن میں کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شیلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوض میں دھو لے۔ بس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے، اور جس روز یسو نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھیں وہ سبت کا دن تھا۔ پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا، تو کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا، اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، میں نے دھو لیا اور اب بینا ہوں۔ بس بعض فریسی کہنے لگے کہ یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا۔ مگر بعض نے کہا کہ گناہگار آدمی کیوں کر ایسے معجزے دکھا سکتا ہے؟ بس ان میں اختلاف ہوا۔ اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ لوکا۔ اور عید فطیر، جس کو عید فسا کہتے ہیں، نزدیک تھی۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے، اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں، اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں وہ خداوند نعمت کہلاتے ہیں۔ مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے۔ کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ رومیو۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی خدمت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ بس اگر حاکم سے نڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ افسیوں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو، بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گایا بجایا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سائنسی اتحاد جو خدا اور انسان کے درمیان موجود ہے، اسے عملی زندگی میں کشیدہ کرنا چاہیے، اور خدا کی مرضی عالمگیر طور پر پوری کی جانی چاہیے۔ وہ جو خدا کی مرضی یا الہی سائنس کی شرائط کو جانتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ حسد کی عداوت اپنے اوپر لیتا ہے، اور جو خدا کی فرما برداری سے انکار کرتا ہے، محبت کی طرف سے اسے تنبیہ کی جاتی ہے۔ ساری جان نثاری کا مادہ الہی محبت، بیماری کی شفا اور گناہ کی تباہی کا عکس اور اظہار ہے۔ ہمارے مالک نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ ایمان سے آگے کسی شخص کا مقصد سچائی کے نقش قدم کو ڈھونڈنا ہونا چاہیے، جو صحت اور پاکیزگی کی راہ ہے۔ ہمیں حوریب کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جہاں خدا ظاہر ہوتا ہے، और रूहानी इमारत के कोने के सिरे का पत्थर पाकीजगी है। रूह का बपतिस्मा बदन की सारी नापाकी को धोना इस बात का इशारा देता है कि पाक दिल खुदा को देखते हैं और वो रूहानी जिंदगी और उसके इजहार तक पहुंच रहे हैं। जब उसके अंदर इंसानी अंसर इलाही अंसर के साथ कशमकश कर रहा था तो हमारे अजीम उस्ताद ने कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, यानी मुझ में बदन नहीं बल्कि रूह जाहिर हो। ये रूहानी मोहब्बत की नई समझ है। ये सभी कुछ मसीह या सच्चाई के लिए मुहैया करता है। ये दुश्मनों को बरकत देता है, बीमारों को शिफा देता है, गलतियों को खारिज करता है, खताओं और गुनाहगारों में मुर्दा लोगों को जिंदा करता और जो दिल के गरीब और फिरौतन हैं उनको अंजील की खुशखबरी सुनाता है। इंसानी क़ुव्वत इरादी साइंस नहीं है। इंसानी मर्जी नामनिहाद मादी हवास से ताल्लुक़ रखती है और इसके इस्तेमाल की मजम्मत की जानी चाहिए। बीमार की सेहत याबी की ख्वाहिश क्रिश्चियन साइंस का मवादुल तिबियाती अमल नहीं है बल्कि सरासर हैवानी मकनातीसियत है। इंसानी क़ुव्वत इरादी इंसान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर सकती है। ये मुसलसल बदी पैदा करती है और हस्ती की हकीकत पसंदी का एक अंसर नहीं है। सच्चाई ना कि जिस्मानी रजा वो इलाही क़ुव्वत है जो बीमारी से कहती है, साकत हो, थम जा। क़ुव्वत इरादी हर किस्म की बदी के काबिल है। ये कभी बीमार को शिफा नहीं दे सकती क्योंकि ये गैर रास्तबाज की दुआ है, जबकि जज्बात की मश्क उम्मीद ईमान मोहब्बत रास्तबाज की दुआ है। ये दुआ हवास की बजाय साइंस की जेर निगरानी होते हुए बीमार को शिफा देती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि क्रिश्चियन साइंस में जिस्मानी शिफा का इजहार इंसानी सोच के अमल का सिर्फ एक मरहला पेश करता है जो ऐसे गैर वाजह तरीक़े से काम करता है जिसका नतीजा बीमारी का इलाज होता है। इसके बरक्स क्रिश्चियन साइंस अकली तौर पर वाजिया करती है कि दीगर तमाम तर मर्जियाती तरीक़ाकार इंसान के मादे पर ईमान, कामों पर ईमान, ना कि रूह पर ईमान, बल्कि उस जिस्मानी अकल का फल हैं जो साइंस को हासिल होने चाहिए। क्रिश्चियन साइंस की जिस्मानी शिफा इलाही असूल के काम से अब यसु के ज़माना की तरह सामने आती है, जिससे कबल गुनाह और बीमारी इंसानी ज़मीर में अपनी हकीकत खो देते हैं और ऐसे फितरी और ऐसे लाजमी तौर पर गायब हो जाते हैं जैसे तारीकी रोशनी को और गुनाह दुरुस्तगी को जगा देते हैं। उस वक्त की तरह अब भी ये कादिर का माफुकुल फितरती नहीं बल्कि इंतहाई फितरती हैं। ये इमैनुअल या खुदा हमारे साथ है का निशान है, एक इलाही असर जो इंसानी शऊर में हमेशा से मौजूद है और ख़ुद को दोहराते हुए अभी आ रहा है, जैसे कि माजी में इसका वादा किया गया था कि शऊर के कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर पाने के लिए और कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए। हमारा आसमानी बाप इलाही मोहब्बत ये मुतालबा करता है कि हमें हमारे मालिक और उसके शागिर्दों के नमूने की पैरवी करनी चाहिए और सिर्फ उसकी शख्सियत की इबादत नहीं करनी चाहिए। ये बात अफसोसनाक है कि इलाही खिदमत का जुमला आम तौर पर रोज़मर्रा के अमाल की बजाय अवामी इबादत के मानों के साथ आया है। उसका कामिल नमूना हम सब की निजात के लिए था, मगर सिर्फ वो काम करने के वसीला से जो उसने किए और दूसरों को उनकी तालीम दी। शिफा के लिए उसका मकसद सिर्फ सेहत को बहाल करना नहीं था बल्कि अपना इलाही असूल जाहिर करना भी था। जो कुछ उसने किया और कहा उसमें वो खुदा से सच्चाई और मोहब्बत से मुतासिर था। उसको अजियत देने वालों के मकासद गरूर, हसद, जुल्म और बदला था जो जिस्मानी यसू पर उतरा, मगर निशाना इलाही असूल यानी मोहब्बत थी जिसने उनकी शहवत परस्ती को मलामत किया था। यसु बेगर्ज़ था, उसकी रूहानियत ने उसे हिसी लोगों से मुनफरिद रखा और खुदगर्ज मादी लोगों की उसके लिए नफरत का सबब भी यही बनी। मगर ये उसकी रूहानियत ही थी जिसने यसु को बीमार को शिफा देने, बदरू को निकालने और मुर्दों को जिंदा करने के काबिल बनाया। क्योंकि इंसान के बनाए हुए निज़ाम इस बात पर जोर देते हैं कि खुदा के कवानीन के साथ मुकम्मल मुताबकत रखते हुए इंसान बीमार और नाकारा हो जाता, तकलीफ़ उठाता और मर जाता है, क्या हमें इस पर यकीन करना चाहिए? क्या हमें ऐसे इख्तियार पर यकीन रखना चाहिए जो कामियत से मुतलक खुदा के रूहानी हुक्म से इनकारी है? ऐसा इख्तियार जिसे यसु ने गलत साबित किया। उसने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया, उसने उसके इनहराफ में बीमारी से शिफा बख्शी जिसे मादी शरीयत कहा जाता है, लेकिन खुदा की शरीयत अक्ल की शरीयत के मुताबिक। जैसे पौलुस रसूल ने पुराने ज़माने में गैर ईमानदारों से पूछा, वैसे ही आज के दिन रबी हमारी शिफा और तालीम से मुतलक पूछते हैं कि शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करते हो? ताहम हमारे पास खुशखबरी है और हमारे मालिक ने मादी कानून को इसके बरखिलाफ शिफा देते हुए कलदम कर दिया। हम मालिक के नमूने की पैरवी करने की तलकीन करते हैं। हमें मादी कानून को रूहानी कानून के मातहत रखना चाहिए। क्रिश्चियन साइंस के दो बुनियादी नकात ये हैं कि ना जिंदगी ना इंसान मरता है और कि खुदा बीमारी का मुसन्निफ नहीं है। यसु का इकरार करने वाले उसके पैरोकार उसकी राहों की पैरवी करना और उसके बड़े कामों की नकल करना कब सीखेंगे? वो लोग जिन्होंने उस रास्तबाज शख्स की शहादत हासिल की, वो खुशदिली से उसके पाक मुस्तकबिल को एक मस्ख शुदा नज़रियाती मुकाम में तब्दील कर देंगे। खुदा करे कि आज के मसीही इस चाल चलन की मज़ीद अमली अहमियत को कबूल करें। यह मुमकिन है। हाँ, ये हर बच्चे मर्द और औरत की जिम्मेदारी और इस्तेहकाक है कि वो ज़िंदगी और सच्चाई, सेहत और पाकीज़गी के इजहार के वसीला मालिक के नमूने की किसी हद तक पैरवी करें। क्रिश्चियन साइंस के दावों की ताकीद देते हुए मैं कोई नामुमकिन बात नहीं पूछता। दौड़ को तेज़ करने की ज़रूरत इस हकीकत का बाप है कि अक़ल ये कर सकती है, क्योंकि अक़ल आलूदगी की बजाय पाकीज़गी, कमज़ोरी की बजाय ताकत और बीमारी की बजाय सेहतमंदी बख्श सकती है। ये पूरे निज़ाम में काबिल तब्दील है और इसे हर ज़र्रे तक बना सकती है। तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। जैसे आसमान पर है, ज़मीन पर भी हमें ये जानने के काबिल बना कि खुदा क़ादर मुतलक आला है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अकासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इसलाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।